कि आज की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है तो वो है ईगो प्रॉब्लम। सारा स्ट्रेस का कारण भी ईगो हो जाता है। अगर स्ट्रेस अंदर में पैदा होने लगा तो इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं ईगो है। कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन से प्रकार का ईगो है, क्योंकि ईगो भी कई प्रकार के हो जाते हैं, तो पहचान नहीं पाते हैं। बाकी सब एरिया में हम ठीक होते हैं, लेकिन जिस बात का ईगो है वहाँ से हमारा टकराव अक्सर शुरू होता है। तो वास्तव में ईगो क्या है और ईगो क्यों आता है, तो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे और उनका एक चेला था। तो महात्मा जी को जाना था हिमालय में, तो उसने अपने जाने की सारी तैयारी कर ली और चेले को कहा अभी आश्रम को तुम संभालना पीछे। तो जब जाने लगे तो वो चेले ने कहा कि आप जाने से पहले मेरे को ये बता के जाइए कि ऐसी कौन सी बातें आएंगी जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि मैं आपके पीछे सही ढंग से ये आश्रम संभाल सकूं। तो आप मुझे ये बता के जाइए कि मुझे किस बात का अटेंशन रखना होगा। तो उसके गुरु ने उसको कहा एक शब्द, अवेयरनेस, स्मृति। चेला कुछ ज्यादा समझा नहीं उसमें कि अवेयरनेस माना क्या। तो जब स्मृति कहा तो उसको लगा इतना छोटा सा शब्द है, बस इतना ही अटेंशन रखना है। बोला हाँ, गुरु का मौन था तो उसने इशारे में कह दिया हाँ, लिख करके दिया स्मृति, अवेयरनेस। जब हाँ कर दिया तो चेला उस शब्द को देखता रहा, सोचता रहा अंदर में, स्मृति माना क्या। थोड़ी देर के बाद वो फिर गुरु के पास गया कि ये स्मृति माना क्या, अवेयरनेस माना क्या, ये बता दीजिए। तो गुरु तो मौन में थे, तो उसने लिख दिया कि अवेयरनेस माना अवेयरनेस, स्मृति माना स्मृति। चेला देखता रहा, स्मृति माना स्मृति, और कोई आगे पीछे कोई शब्द नहीं होगा, बस इतनी सी बात है ना, ध्यान रखना है ना, स्मृति रखनी है, बस हर बात की स्मृति रखनी है, ठीक है वो तो रख दूंगा। लेकिन फिर उसका मन चलता रहा, लेकिन कुछ आगे पीछे होना चाहिए जरूर, ये शब्द अकेला नहीं होना चाहिए। तो वो फिर से गया गुरु के पास कि इसके आगे और पीछे कुछ लिख के दे दो। तो गुरु तो मौन में था, तो उसने वो अवेयरनेस शब्द के आगे और पीछे यही लिख दिया, अवेयरनेस 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 मीन्स अवेयरनेस, है ना। बाबा भी शायद हम बच्चों को यही बार बार कहते हैं, बच्चे स्मृति स्वरूप बनो। और शायद इसीलिए गीता का संदेश भी यही है कि स्मृति स्वरूप हो जाएंगे तो नष्ट मोह बन जाएंगे। तो स्मृति मेन हमारे जीवन का आधार है, बिना स्मृति स्वरूप बने हम कुछ भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। अगर जागृति नहीं है, स्मृति नहीं है हमें अपने आप की, बाप की, ड्रामा की, परिवार की, ज्ञान की, ज्ञान को कहाँ कहाँ अप्लाई करने की स्मृति नहीं है तो एप्लीकेशन ही नहीं है। जीवन में ज्ञान अगर नहीं अप्लाई होता है या उसको यूज करना नहीं आता है, समय पर वो भूल जाती है बातें, तो उसका कारण है कि हम उस ज्ञान के बारे में स्मृति स्वरूप नहीं है। और इसलिए जहाँ स्मृति विस्मृति हो जाती है, इसलिए दुनिया में भी कहा हुआ है कि सारा ये संसार का खेल ही है स्मृति और विस्मृति का, दो ही चीज का ये खेल है। सत्युग में सारी विस्मृति हो जाती है, सारा कल्प वो विस्मृति रहती है, संगम पर आकर के बाबा हमें हर बात की स्मृति दिलाता है। और जितना उस स्मृति का स्वरूप बन जाते हैं उतना कोई भी कमजोरी, चाहे ईगो हो, एंगर हो, चाहे कोई भी कमजोरी हो, वो कमजोरी आ नहीं सकती है हमारे पास में। तो इसलिए ये स्मृति स्वरूप बनने की बात है। एक चीज जो हमेशा हम करते आए हैं वो क्या है, हमेशा निरंतर जो चलता है, हाँ, कौन सी क्रिया एक निरंतर चलती रहती है हमारी, हाँ, सोचने की, थिंकिंग, थिंकिंग जो है हमारी निरंतर चलती रहती है। सोचने की क्रिया जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी सोच बंद नहीं हो सकता है। श्वास और सोच, ये दोनों का गहरा कनेक्शन है। जैसे श्वास को रोक नहीं सकते, वैसे सोच को भी रोकना बड़ा कठिन होता है। और जिस प्रकार का, जिस क्वालिटी का हमारा सोचने का होता है, उसी प्रकार के, उसी की क्वालिटी की हमारी फीलिंग्स या भावनाएं अंदर में पैदा होती है। नेगेटिव विचार होगा तो नेगेटिव भावनाएं होंगी, पॉजिटिव विचार होगा तो पॉजिटिव भावनाएं, फीलिंग्स रहेंगी। फीलिंग्स कहो या इमोशंस कहो, इमोशंस माना भी भावनाएं। जैसी हमारी फीलिंग्स होंगी वैसे ही हमारी मनोवृत्ति बनेंगी, एटीट्यूड रहेगा, हर बात के प्रति हमारा मनोवृत्ति, हमारी भावनाएं जैसी होंगी वैसी ही रहेंगी। एटीट्यूड, उसी मनोवृत्ति के साथ हम उस चीज को देखेंगे, करेंगे। और जैसी हमारी मनोवृत्ति होंगी, एटीट्यूड होगा, वैसे ही हमारे एक्शन, वैसे ही हमारे कर्म होगा, बिहेवियर या व्यवहार फॉलो करता है। और जैसा हमारा व्यवहार या कर्म होता है वैसे हमारे कैरेक्टर, हमारा चरित्र बनता है या पर्सनालिटी बनती है, वैसे हमारी पर्सनालिटी क्रिएट होती है। इसीलिए कहावत है दुनिया के अंदर कि वॉच आउट फॉर योर थॉट्स, उसको देखते रहिए, क्योंकि दे बिकम योर फीलिंग्स, वही आपकी भावनाएं बन जाएंगी। वॉच आउट फॉर योर फीलिंग्स, आप अपनी भावनाओं को देखते जाइए, क्योंकि वही आपकी मनोवृत्ति बन जाएंगी। मनोवृत्ति माना वृत्ति कैसे बनती है, वृत्ति शब्द निकला है वृत्त से, वृत्त माना एक सर्कल। तो जितना हमारा संकल्पों का जो वृत्त तैयार होता है उसी से हमारी वृत्ति बनती है। तो इसीलिए वॉच आउट फॉर योर एटीट्यूड बिकॉज दे बिकम योर एक्शन, वही आपके कर्म हो जाएंगे। और वॉच आउट फॉर योर कर्म बिकॉज दे बिकम योर कैरेक्टर, वही आपका चरित्र बन जाएगा। इसीलिए वॉच आउट कहते हैं, वॉच कंटिन्यूअस उसको देखते रहिए। वॉच माना ये वर्ड्स, हमारे वचन भी वैसे होंगे, एक्शन भी वैसा होगा, कर्म भी वैसे होंगे, थॉट्स भी वैसे होंगे, सोचने की प्रक्रिया भी वैसी ही चलेगी, कैरेक्टर भी वैसा बनेगा। और हेल्थ, वॉच आउट, इसीलिए उसको वॉच आउट कहा कि वॉच आउट, हमेशा देखते रहिए, क्योंकि यही आपके शब्द, यही आपके कर्म, यही आपके विचार, यही आपका चरित्र और यही आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका संपूर्ण असर होता है। और जैसा आपका कैरेक्टर होगा, वॉच आउट फॉर द कैरेक्टर बिकॉज दे बिकम योर, हाँ, कैरेक्टर से क्या बन जाएगा, हाँ, वैसे हमारे पर्सनालिटी तो आ गई ना, वही कैरेक्टर कहो या पर्सनालिटी कहो, क्योंकि दे बिकम योर डेस्टिनी, दे डिसाइड योर डेस्टिनी, वही आपका भावी बन जाएगा। इसीलिए वैसे दुनिया में ये कहा जाता है कर्म से भावी बनती है, जैसा कर्म करेंगे वैसी भावी बनेगी, लेकिन वास्तव में उसकी जड़ें हैं, जैसा सोच चलेगा, जिस क्वालिटी का सोच चलेगा वैसी भावी हम अपने लिए तैयार करते हैं। लेकिन ये सोच हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव किस आधार पर बन जाते हैं, एक व्यक्ति के प्रति, एक व्यक्ति का सोचना है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वहीं दूसरा व्यक्ति आकर कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा है, हम उसको जानते हैं ना अच्छी तरह से, ये क्या है। तो एक ही व्यक्ति के प्रति दो जने का दो प्रकार के सोच है, तो ये हमारे सोच को पॉजिटिव या नेगेटिव किस आधार पर, अंदर की कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है, क्योंकि इस कोर्स का ये गोल्डन रूल है, एक सुनहरी नियम है कि हम कभी भी किसी के ऊपर भी दोष नहीं डाल सकते हैं कि फलाने के कारण मेरी सोचने की धारा ऐसी बन गई। नहीं, अंदर कोई मैकेनिज्म है जो हमारी सोच को वैसी बना रहा है। तो एक व्यक्ति के प्रति हम अच्छा सोचते हैं जिसके प्रति सब बुरा सोचते होंगे, और एक व्यक्ति के प्रति हम बुरा सोच रहे हैं जिसके प्रति सब अच्छा सोच रहे होंगे। तो हमारी सोच को पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी अंदर की मैकेनिज्म बना रही है, दृष्टिकोण, या ये कहें जिस प्रकार से हम उस परिस्थिति को या व्यक्ति को देखते हैं, परसेप्शन, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा हमारी विचार चलेंगे उस व्यक्ति के प्रति। लेकिन ये दृष्टिकोण भी हमारा किस आधार पर बना, दृष्टिकोण जो बना पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी किस आधार पर बना। लेकिन लगाव से पहले हम, एक व्यक्ति न्यूट्रल है जिसके प्रति न लगाव है न कोई इल फीलिंग्स है, लेकिन उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण ही ऐसा है, हा? किसी और पर दोष, अंदर की कोई मैकेनिज्म है, हा? पास्ट का एक्सपीरियंस, कोई पूर्व अनुभव ऐसा हमें मिला है उस व्यक्ति से, इसलिए उस व्यक्ति के प्रति वैसा दृष्टिकोण बन गया मेरा। तो मेरे अनुभव ने वो दृष्टिकोण बनाया, लेकिन वो अनुभव कैसे मुझे प्राप्त हुआ, जरूर वहां कुछ प्रयोग हुआ है। उस अनुभव मुझे कब प्राप्त हुए, वो अनुभव मुझे कब प्राप्त हुए, जरूर वहां कुछ प्रयोग हुआ है जिस कारण मुझे, क्योंकि वही व्यक्ति से एक व्यक्ति को अच्छा अनुभव मिला, मुझे बुरा अनुभव मिला, व्यक्ति तो वही है, लेकिन जरूर हमारे इंटरैक्शन में कुछ प्रयोग ऐसा हुआ है जिस कारण से एक को अच्छा अनुभव मिलता है, एक को बुरा अनुभव मिलता है। क्या प्रयोग होता है, हा? नहीं, पिछले जन्म की बात छोड़ो, अभी प्रेजेंट में जीना है हमको, पिछले जन्म की बात नहीं करो आप, हा? ऑब्जर्वेशन नहीं, और हाँ, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट बना किस आधार से, अनुभव मिला आपको, वो अनुभव कैसे मिला आपको, कोई ना कोई वैल्यूज का प्रयोग हुआ है, कोई ना कोई मूल्य का प्रयोग हुआ है, इसलिए मुझे वो अनुभव मिला। एक व्यक्ति के साथ मैं बड़े शांति से बात करती हूँ तो वो भी शांति से बात करेगा, तो मैं कहती हूँ ये व्यक्ति अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति आता है बड़े गुस्से से उससे बात करता है तो वो भी रिएक्ट करता है, तो कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला है। अरे लेकिन तुमने गुस्सा जो प्रयोग किया अपने व्यवहार में, नहीं मैं तो खाली जोर से ही बोल रहा था, तो वो व्यक्ति, मैं भी खाली जोर से ही बोल रहा था। लेकिन वास्तव में जो वैल्यूज हमारी प्रयोग होती है, हमारे कर्म में आती है, तो नेचुरल है कि उसका काउंटर रिएक्शन जो आएगा वो वैसा ही आएगा। हमने शांति से बात किया तो वो भी शांति से बात करेगा, हम ईगो के साथ बात करेंगे तो वो भी अपना ईगो दिखाएगा, हम अगर गुस्से से बात करेंगे वो भी अपना गुस्सा दिखाएगा, हम मधुरता से बात करेंगे वो भी मधुरता से बात करेगा। तो जहां जिस वैल्यू का प्रयोग होता है वैसा अनुभव हमें मिलता है। तो वैल्यू का प्रयोग हो या अवगुण, या गुण का प्रयोग हुआ या अवगुण का प्रयोग हुआ, तो जो गुण और अवगुण का प्रयोग मेरा हुआ वैसा ही मुझे अनुभव मिला। लेकिन वो गुण या अवगुण का प्रयोग किस आधार पर होता है, हा? गुण और अवगुण का प्रभाव, अवगुण का प्रभाव हुआ ज्ञान है ऐसे नहीं कहेंगे, संस्कार में भी ऐसी कौन सी चीज है, वो दृष्टिकोण तो यहां बन गया, अनुभव के आधार पर दृष्टिकोण बना, अनुभव हुआ गुण और अवगुण के प्रयोग से। लेकिन वो गुण और अवगुण का प्रयोग जो हमारे से होता है, आज हम बड़ों के सामने जाएंगे कैसे बात करेंगे, और अपने छोटों के सामने जाएंगे दादागिरी करेंगे, तो छोटों के सामने दादागिरी हो गई, माना वहां अवगुण निकल गया, बड़ों के सामने भले वो बड़ा गलत भी बोलता हो भी हम शांति से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते ना, तो एक व्यक्ति के सामने मैं ही हूं, एक व्यक्ति के सामने मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती हूं, एक व्यक्ति के सामने मैं दादागिरी दिखा रही हूं, तो ये गुण और अवगुण जो निकल रहे हैं वो किस आधार पर निकल रहे हैं? वो गुण और अवगुण जो निकल रहे हैं हमारे व्यवहार में वो किस आधार पर निकल रहे हैं? मान्यता के आधार पर, बिलीफ्स। ये बिलीफ है ना कि छोटा है मेरे से तो कैसे भी चला सकते हैं हम, बिलीफ हो गई ना अंदर, एक मान्यता मेरी बन गई। वो मान्यता जो बनती है हमारी, वो मान्यता बनने के कई आधार है। मान्यता हमारे संस्कारों के आधार पर भी बनती है, मान्यता वातावरण के आधार पर भी बनती है, संघ के आधार पर भी बनती है, फिर मीडिया का एक्सपोजर जितना है उस आधार पर भी बनती है, एजुकेशन सिस्टम के आधार पर बनती है, फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर बनती है। तो मान्यता को बनाने के कई फैक्टर्स है, लेकिन जैसी मेरी मान्यता खुद के प्रति है, मैं बड़ी हूं इससे, इससे मैं छोटी हूं, तो खुद के प्रति जो मान्यता मैं अपनी बनाती जा रही हूं वैसे मेरे गुण या अवगुण का प्रयोग होता है। तो दूसरे के प्रति मान्यता वो बाद की बात है, लेकिन स्वयं के प्रति मेरी मान्यता कि मैं ये हूं, इसके सामने मैं बड़ी हूं, इसके सामने मैं छोटी हूं, तो मेरी मान्यता है ना, लेकिन ये इतनी सूक्ष्म रूप से अंदर कार्य करती है कि ये सारा मैकेनिज्म उस पर डिपेंड करता है, सारा आधार। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि खाली थिंकिंग हमारे भावी को नहीं बनाता, लेकिन ये मान्यता, जिस क्वालिटी की मान्यता को आपने पकड़ा है स्वयं के बारे में, वैसी भावी स्वयं के लिए आप निर्मित करते हैं। अब मान्यता किस प्रकार बनती है, और उसी को, उस मान्यता, जो मेरी मान्यता मैंने खुद के प्रति बनाई है, मैं ये हूं, और उस मान्यता के साथ जितना अटैचमेंट है, उस मान्यता के साथ मेरा जितना अटैचमेंट है, लगाव है, उस लगाव को कहा जाता है ईगो है। ईगो क्या चीज है? अटैचमेंट टू अ रॉन्ग बिलीफ। जब हम अपने प्रति गलत मान्यता बनाने लगते हैं खुद के प्रति, और उसके साथ हमारा इतना लगाव हो जाता है और उस लगाव को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमारा ईगो बन जाता है। कैसे वो ईगो बनता है? क्योंकि अटैचमेंट जहां हुआ वहां एक भ्रम क्रिएट होता है, इल्यूजन बन जाता है, और उस भ्रम के साथ हम जीने लगते हैं, मैं ऐसी ही हूं, ये भ्रम हो गया खुद के बारे में। और जैसा हमारा इल्यूजन होगा, खुद के प्रति भ्रम होगा, तो दूसरा कोई अगर बात भी देगा ना, उसके प्रति हमारा रेजिस्टेंस चालू होगा। रेजिस्टेंस माना एक प्रतिक्रिया, प्रतिरोध चालू होगा। किसी ने कोई अच्छे विचार भी दिया ना, अब मुझे अपने विचारों के साथ इतना लगाव है, मान लो कि मैंने खुद के प्रति ये धारणा बनाई कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अक्सर ब्राह्मण लोगों के सामने यही आता है, इसीलिए लोगों को कहते हैं, इसको अपना ज्ञान का बड़ा अभिमान रहता है, ये बीके को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई हमारे पास तो सर्वोच्च ज्ञान आ गया, तो दुनिया वाले लोग हमारे सामने तुच्छ है, उनके पास कोई ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए जब वो ज्ञान के विषय में मेरी मान्यता ये बन गई, मैं बड़ी ज्ञानी हूं, इतना सूक्ष्म है ये, और उससे मेरा अटैचमेंट है। भले सत्य ज्ञान मिला है हमें, लेकिन उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो गया, तो हम इस ब्रह्म में जीने लगे, हम ज्ञानी हैं, दूसरे अज्ञानी हैं। आइडेंटिफिकेशन भी हमारा इस प्रकार से करते हैं हम ज्ञानी हैं, ये अज्ञानी है। ये बड़ा बुरा लगता है, एक्चुअली ये सभ्यता वाली लैंग्वेज नहीं है हमारे लिए भी। अगर ज्ञानी है तो ज्ञानी के सामने कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए वास्तव में, लेकिन अगर हम डिफरेंस करते हैं, माना मुझे अपने ज्ञान की बुद्धि के साथ इतना अटैचमेंट है, कि मैंने ये ब्रह्म बना दिया, मैं ज्ञानी हूं और दूसरा अज्ञानी है। और उस कारण दूसरा अगर अच्छा विचार, आज दुनिया में बहुत अच्छे विचार रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, जनरल ज्ञान जो है वो विचार भी बहुत अच्छे लोग देने वाले होते हैं, फिलोसोफर्स जो होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जब भी कोई विचार हमें देता है ना, हम उसके विचार को क्या करते हैं, काट देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो काट दिया यानी दूसरे के विचारों का एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं अपने, मेरे अंदर ये मान्यता है, ये अज्ञानी क्या सुनाएगा मुझे ज्ञान, ये अज्ञानी मुझे क्या ज्ञान सुनाएगा, इसलिए तुरंत उसके विचार को हम काट देते हैं, एक प्रतिरोध उसके विचार के प्रति, कि उसके विचार भले, उसको समझने की भी हम कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, और इसलिए तुरंत एक रेजिस्टेंस रहता है, और जहां रेजिस्टेंस है वहां एक भय, फियर, वहां एक फियर है, एक भय क्रिएट होता है कि आज मैंने उसको काटा लेकिन कहीं कल मेरे को ये चैलेंज करके अपनी बात को प्रूव ना कर दे, क्योंकि दुनिया में भी इतने होशियार लोग हैं कि जो आपको भी महाअज्ञानी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए एक भय बनने लगता है कि पता नहीं कल को मेरी कोई बात को पकड़ करके ये मेरे को ही चैलेंज ना कर दे, तो एक भय क्रिएट हो गया। और जहां ये भय आया, कोई भी प्रकार का भय है अंदर में, भय इज इक्वल टू ईगो, ये ईगो की परख है, ईगो की पहचान है, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि कहीं कोई मेरी निंदा न कर दे, फियर ऑफ फेलियर कहां हम क्या फेल ना हो जाए, सक्सेसफुल, सफल नहीं हुआ, असफल ना हो जाए, तो असफल होने का भय, क्रिटिसाइज कोई ना कर दे उसका भय, कहीं ना कहीं कोई भय। और जितना ज्यादा व्यक्ति के अंदर भय होता है उसका प्रमाण है कि उसका इतना ईगो ज्यादा होता है। महात्मा गांधी को फियर ही नहीं था क्योंकि उसमें ईगो नहीं था, मदर टेरेसा को फियर नहीं था, वो ऐसे ऐसे लेप्रसी वाले पेशेंट को हाथ लगाती थी, ये करती थी, संभाल करती थी, उसकी सफा करती थी, तो भी उसको भय नहीं था कि कहीं ये लेप्रसी मुझे लग गया तो, और लोग दूसरे तो दूर से ये इसको दूर रखो दूर रखो, भय कितना है अंदर में, क्योंकि ईगो, स्वयं को क्या समझते हम अच्छे हैं इससे। तो जहां पर भी भय है किसी व्यक्ति से, किसी बात से, किसी चीज से, ये प्रमाणित करता है कि ईगो है। और ईगो है तो इसीलिए ईगो की डेफिनेशन क्या है, मेरे पास जो स्लाइड्स आदि है वो तो इंग्लिश में रहेगी लेकिन हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो इसलिए ईगो की डेफिनेशन है कि ईगो इज द अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज और अ रॉन्ग बिलीफ दैट इज क्रिएटेड अबाउट माय ओन सेल्फ, स्वयं के प्रति मैंने जो मान्यता बनाई है उसके साथ जब मेरा लगाव हो जाता है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, वही ईगो कहलाता है। अब ईगो बनता कैसे है, ईगो बनने का आधार क्या है, ईगो बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर पैदा होता है, बनता है, जो पता भी नहीं चलता है कैसे ये पैदा होता है। ईगो जब पैदा होता है, ये अटैचमेंट, अटैचमेंट कैसे बनता है, अटैचमेंट बनने का सबसे पहला आधार है अटेंशन, अटेंशन जाना, किसी बात के प्रति हमारा ध्यान जाना। एक मैं मिसाल आपको देती हूं, एक आर्किटेक्ट है, नया फ्रेश ग्रेजुएट है और कदम रखता है आर्किटेक्ट के फील्ड में। अब जब फ्रेश ग्रेजुएट होकर के आया आर्किटेक्ट के फील्ड में, उसने कदम रखा, उसके पास बहुत रचनात्मक शक्ति है, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज है, उसको कोई ईगो नहीं है, इतना अच्छा उसको कोई प्रोजेक्ट मिला, किसी ने उसको प्रोजेक्ट दिया कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है हमको, और उस बिल्डिंग के अंदर ऐसी ऐसी सुविधा हो, और उसका एलिवेशन इस प्रकार बनाना है, आप पुरुषार्थ करो। उसको हर प्रकार से हेल्प देने के लिए तैयार किया। उसको भी बड़ा उमंग आया कि नहीं मुझे करना है और अच्छे से अच्छा बनाना है। तो बड़े उमंग उत्साह के साथ उसने वो डिजाइन बनाना चालू किया, सारी अपनी रचनात्मक शक्ति लगा दी उसमें। यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो अच्छा दिखेगा, ऐसा करेंगे, सारी क्रिएटिविटी लगा करके इतना अच्छा उसने बिल्डिंग का डिजाइन बनाया, एलिवेशन भी बहुत सुंदर बनाया, सबको पसंद आया, पास हो गया, वो बिल्डिंग बनने लग गई। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई, वहां पर भी जो जो बातें, जो मुसीबतें आई कंस्ट्रक्शन वालों को, तो उसको पूछते थे, तो वो वहां पर भी इतनी अच्छी अपनी रचनात्मक शक्ति लगा करके उस बात को हल करके कर देता था। जैसे बिल्डिंग तैयार हो गई, उसका जो आगे का एलिवेशन लोग देखने लगे, उस एरिया का पूरा नक्शा ही बदल गया। जो वहां से गुजरता एक ही बात बोलता है, कौन है इसका आर्किटेक्ट, क्या सुंदर इसने बिल्डिंग बनाई, ये इस जगह का नक्शा ही बदल दिया इसने। अच्छा, जब बिल्डिंग बन करके तैयार हो गई, उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने लगा। इनॉग्रेशन में शहर के बड़े बड़े वीआईपीज को बुलाया गया और उस आर्किटेक्ट को भी बुलाया कि नहीं भाई तुमको भी आना है, तुमने इतनी मेहनत से बनाया, लोग पूछते रहते हमको भी कि भाई किसने ये बनाया, किसने, तो आज तेरा परिचय सबसे करा देंगे। बुलाया उसको। अच्छा, उस इनॉग्रेशन फंक्शन में लोगों के सामने उसका परिचय हुआ कि ये वो यंग व्यक्ति है जिसने अपनी सारी रचनात्मक शक्ति और बिना कोई अनुभव के, ये उसकी पहली क्रिएशन है और पहली क्रिएशन ही उसने इतनी सुंदर बनाई जो बात मत पूछो, पूरी इतनी तो बताता है कि ये व्यक्ति के अंदर कितनी रचनात्मकता है। बड़ा खुश हुआ, उसकी पहली सफलता है, बड़ा खुश हुआ। अच्छा, खुश होने के बाद जैसे ही वो फंक्शन में पूरा हुआ, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे, उसको धन्यवाद देने लगे, कॉम्प्लीमेंट देने लगे, आगे के लिए सफलता के लिए कामनाएं देने लगे, शुभ भावना शुभ कामनाएं देने लगे, तब वो व्यक्ति को महसूस होता है कि सचमुच मैंने इतना अच्छा बनाया है। उसका ध्यान गया, अटेंशन जाता है सचमुच, क्योंकि तब तक उसको ये नहीं पता था कि लोगों को सचमुच इतना पसंद आएगा। लेकिन जितनी उसको ज्यादा महिमा मिलने लगी, ज्यादा उसकी कॉम्प्लीमेंट्स उसको देते गए, लोग शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते गए, आगे भी तुम ऐसे सफल होते रहो, बहुत अच्छी तरक्की करते रहो, तब उसका ध्यान गया कि सचमुच मैंने इतना अच्छा बनाया है। फिर वो ढूंढने लगा उसमें कि इसमें कौन सी बातें लोगों को पसंद आई है, लोगों का एनालिसिस लेने लगा कि इनको क्या क्या पसंद आया है, अटेंशन गया। बार बार उस मकान को सामने लाता, अपने मनस पटल पर ले आता, कौन ये बात अच्छी लगी होंगी, ये चीज अच्छी लगी होंगी, ये कमरे का जो बनाने का ढंग था ये अच्छा लगा होगा, ये अच्छा सारी जो अच्छी अच्छी बात उसने नोट करने लगी। और जितना ज्यादा उसको इमर्ज करता था अपने मनस पटल पर और उसको याद करता था, उतना ही उसका अट्रैक्शन, उसका खींचाव उस तरफ बढ़ता है। और जितना उसका खींचाव उस तरफ होता है, अट्रैक्शन उस तरफ, उस बिल्डिंग के प्रति उसकी बढ़ती है, और उसको जितना ज्यादा मनस पटल पर लाके देखता है, उतनी वो अपने मन की एनर्जी दे रहा है। और जितनी ज्यादा अपनी मन की एनर्जी देता है, उतना उसका अटैचमेंट उससे होने लगता है। तो अटैचमेंट कैसे बनता है? पहले अटेंशन जाता है, फिर अट्रैक्शन होता है, और फिर अटैचमेंट होता है। अच्छा, पहले वो दूसरे रास्ते से अपनी ऑफिस जाता था, लेकिन अब ये रास्ता पकड़ा उसने, रोज उस बिल्डिंग को देखते हुए जाता है। अब जब दूसरा डिजाइन, लोगों ने उसको और प्रोजेक्ट देने लगे, भाई हमारा भी एक काम है, इतना बना दो, इतना कर दो, अब जितना उसको काम देने लगे लोग, उतना वो उस इमेज, बिल्डिंग का इमेज सामने लाता था, ये अच्छा लगा था ना, ये चीज उसमें डालो, तो वहां से अटैचमेंट शुरू हुआ। अट्रैक्शन और अटैचमेंट शुरू हुआ तो क्रिएटिविटी बंद होने लगी, क्योंकि उसमें जो अच्छा लगा है वही इसमें भी डालना है। तो उसको हटा करके नया क्रिएशन करे, नई क्रिएटिविटी वो नहीं, उसमें जो अच्छा लगा है, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी दे चुका है ना, तो जितनी ज्यादा एनर्जी दे दिया हमने, उतना हमारा लगाव हो गया उस हमारी रचना के साथ, और वो रचना के साथ जितना हमारा लगाव हो गया, अब हमारी नई क्रिएशन में भी वही चीज आने लगी, तो रचनात्मकता वहां से बंद हो गई। जब रचनात्मकता बंद हो जाती है, लोग सजेशन, भाई इसमें थोड़ा है ना, हमको ये सुविधा चाहिए, तो रेजिस्टेंस चालू होता है। अटैचमेंट हुआ ना, तो ब्रह्म में जीना लगा, मैं तो अच्छा ही हूं, मैं अच्छा आर्किटेक्ट बन गया हूं। अब अच्छा आर्किटेक्ट बन गया है तो दूसरे जो विचार और सुझाव देते हैं तो क्या करता है, नहीं नहीं ये संभव नहीं होगा, इसमें ये नहीं हो सकता है, आपको मालूम नहीं, थोड़ा इधर कर देना ना, इसमें आपको मालूम नहीं, ये पूरी एलिवेशन खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, 10 बातें उनको बता देता, ये संभव नहीं है। माना एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, प्रतिरोध हो गया, तो अटैचमेंट हो गया, उसकी निशानी है कि उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जब एक्सेप्ट नहीं हुआ तो एक भय क्रिएट हुआ कि कहीं दूसरा कोई आर्किटेक्ट को बताया उन्होंने, और उसने अगर कह दिया कि हाँ हाँ हो सकता है, तो चैलेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए ये एक भय अंदर बनने लगा, कहीं ये लोग दूसरे के पास न जाए, तीसरे के पास न जाए, पूछने के लिए न जाए, इसके लिए न जाए। ये तो एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम ब्राह्मणों के अंदर भी यही होता है, हा? और इस प्रकार से हम जितनी ज्यादा एनर्जी देते हैं उतना ज्यादा अटैचमेंट होता है, और फिर उस अटैचमेंट से एक एडिक्शन हो जाती है। लगाव इतना ज्यादा जब बढ़ जाता है कि उसके बिना नहीं चलता है, मुझे ये तो होना ही चाहिए, तो एडिक्शन हो गई। तो दुनिया में जैसे लोगों को ड्रग एडिक्शन हो जाती है, यहाँ चीजों के प्रति भी जब हमारा लगाव बढ़ जाता है, अपनी मान्यता के साथ भी जब लगाव बढ़ जाता है, तो उस मान्यता को, उस विचार को हम छोड़ नहीं पाते, और उस विचारों के, उस मान्यता के साथ एडिक्शन हो गया हमारा। एडिक्शन का हिंदी शब्द तो मुझे इतना नहीं मालूम, हाँ, और इसलिए उसका प्राइस भी देना पड़ता है, एटोनमेंट। इसलिए कहते हैं कि कैसे हम अपने मान्यताओं के गुलाम बन जाते हैं, उसके ये रास्ता है, उसका ये रास्ता है, और ये रास्ते को कहते हैं 5 A's, 5 A है, अटेंशन जाता है, फिर अट्रैक्शन होता है, फिर अटैचमेंट होता है, फिर एडिक्शन होने लगती है, और उसके बाद एटोनमेंट, माना उसका प्राइस चुकाना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब कीमत कैसे चुकाते हैं, एक कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक और उसके कंपनी के अंदर एक यूनियन है। अब यूनियन प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है हर कंपनी के अंदर, तो यूनियन प्रॉब्लम चलने के कारण अब एक दिन क्या हुआ कि वो यूनियन लीडर मालिक को मिलने आया, सेक्रेटरी को कहा मुझे मिलना है, 10 मिनट चाहिए। उसने बिठाया बाहर, अंदर गए, सेक्रेटरी ने उसको बताया मालिक को कैसे से फलाना यूनियन लीडर आया है, आपसे मिलना चाहता है, 10 मिनट चाहिए। मालिक ने कह दिया होगी कोई नई डिमांड्स उसकी, कोई नई मांगे होंगी उसकी, सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको शाम को बुलाओ, उसको कह दो शाम को आओ, अभी बहुत बिजी हूं। बाहर आकर सेक्रेटरी ने कह दिया अभी बहुत बिजी है और इसलिए आप शाम को आइए। शाम को गया मिलने के लिए, वो शाम को गया तो वो शाम को कोई मीटिंग में बिजी हो गया, नहीं मिल पाया। दूसरे दिन सुबह गया वो वापस, दूसरे दिन सुबह उसके पास कोई गेस्ट आ गए फॉरेन से, तो उसके साथ मीटिंग चल रही थी। दूसरे दिन शाम को गया फिर से, तो भी वो गेस्ट को बाहर ले जाना था इसलिए बिजी हो गया तो नहीं मिल पाया। तीसरे दिन से वो 10 दिन की छुट्टी लेके चला गया। 10 दिन के बाद कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मालिक की गाड़ी भी गेट से प्रवेश हुई और वो यूनियन लीडर भी प्रवेश हुआ। तब मालिक का ध्यान गया कि ये 10 दिन पहले आया था, बाद में दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम ना कर रहा हो, उसको बुलाना चाहिए। जाते ही उसने बुलाया उसको और पूछा उसको कि 10 दिन तुम पहले आया था लेकिन बाद में फिर दिखाई नहीं दिया। उसने कहा मैं 4 बार आया लेकिन आपके पास समय नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या काम था, किस लिए आया था? बोला जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, अभी कोई काम ही नहीं है। नहीं फिर भी तुम बताओ किस लिए आया था, अभी कोई काम ही नहीं है तो बता के फायदा क्या? नहीं नहीं फिर भी तुम बताओ, चलो काम हो भी गया तो भी तुम बताओ किस लिए आया था तुम मुझे। वो यूनियन लीडर ने कहा मैं 10 दिन पहले जो आया था क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी, उसमें निमंत्रण देना था आपको, तो निमंत्रण पत्रिका लेके आया था लेकिन आपके पास टाइम नहीं। अब उसने कह दिया अब डेस्टिनी क्या होंगी, भावी क्या होंगी, उस समय 10 मिनट नहीं दिया तो भावी क्या होंगी, और 10 मिनट क्यों नहीं दिया, उस गलत मान्यता के साथ अटैचमेंट होगी, कोई नहीं मांगे उसकी। देखो कितना सूक्ष्म ये रोल प्ले करता है, होगी कोई नहीं मांगे उसकी, इसलिए उसने 10 मिनट नहीं, क्योंकि ये मान्यता थी ना, यूनियन लीडर माना मांगे, और उस मान्यता के साथ उसका इतना अटैचमेंट कि उसको छोड़ नहीं पाया, और छोड़ नहीं पाया और उस आधार पर उसने 10 मिनट नहीं दिया। अगर उस समय अपनी मान्यता को तोड़ देता था कि नहीं नहीं कोई नई बात भी हो सकती है, कोई काम की बात भी हो सकती है, दे दो समय उसको, 10 मिनट दे दिया होता था, उसने निमंत्रण पत्रिका दी उसको खुशी हुई मैंने दिया, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देता था उसको भी खुशी हुई कि देखो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन मिला। अच्छा खुद नहीं भी जा सकता था, किसी व्यक्ति के साथ एक बुके लेकर के उस दिन या कोई तोहफा लेकर के भेज देता तो डेस्टिनी क्या होती, भावी क्या होती थी, हाँ बहुत आसान हो जाती थी। लेकिन उस समय वो मान्यता के साथ जब अटैचमेंट है, उस मान्यता को तोड़ नहीं पाए हम, इसलिए कहा कि आज के युग में अगर जीना है और सफल होना है तो हर कदम पर हमें कोई भी मान्यता को बनाकर नहीं चलना चाहिए, कोई पूर्व धारणाओं को लेकर के नहीं चलना चाहिए, उस मान्यता को तोड़ करके ही चलना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने आया उसकी भावना उस समय क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर मेरी कोई भी मान्यता या पूर्व धारणा को लेकर के और उसके साथ हमारा अटैचमेंट है और उसको लेकर के हम चलने गए तो भावी मुश्किल हो जाएंगे। हर वक्त डर बना रहेगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा कह दिया तो, ये भय बना रहेगा। जितना ज्यादा भय उतना ज्यादा ईगो हमारा बढ़ता जाएगा और उस भय को छिपाने के लिए टकराव होता रहता है, इसीलिए एंगर आता है, क्योंकि उस भय को छिपाना है मुझे, लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं करना है कि मेरे अंदर भय है, नहीं तो कहेंगे इसके अंदर भी भय है। तो इसलिए वो भय प्रत्यक्ष ना हो जाए हमारा, इसलिए गुस्सा आता है, उसके पीछे गुस्सा आता है और वहां वो ईगो का टकराव हो जाता है। तो इसलिए कहा ईगो बहुत प्रकार के होते हैं। मान लो किसी को अपने धन के साथ लगाव है, अटैचमेंट धन के साथ है, उसके बारे में जो उसने मान्यताएं बनाई है, धन के बिना नहीं चल सकता है, धन के बिना ऐसा नहीं होता है, धन के, तो उसको धन का ईगो हो जाता है। किसी को अपने बुद्धि के साथ लगाव है तो उसको अपनी बुद्धि का ईगो है, किसी को अपने ज्ञान के साथ लगाव है, ज्ञान की बातों के साथ, वो उसको ज्ञान का ईगो है, किसी को अपनी चीजों के साथ लगाव है, उसको अपनी चीजों का ईगो। इसलिए ईगो कई प्रकार का है, लेकिन ईगो मालूम कैसे पड़े, तो वो व्यक्ति उस बात को ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश करता, जिस बात से हमारा लगाव होता है ना, उस बात को ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश करना ये ईगो का प्रमाण है। अब जिसको धन के साथ लगाव होगा ना, वो हर बात में धन को बीच में लाएगा, धन के बिना कुछ होता ही नहीं है, धन तो चाहिए ही, इसीलिए हम कहते हैं ना धन होना चाहिए, करना चाहिए, वो करना, धन को बार बार बीच में लाएंगे। लोग कहते हैं धन, धन है तो ही सब कुछ है, क्या धन के बिना भी बहुत कुछ है, कहते हैं नहीं उसकी बात को एकदम काट दे, नहीं नहीं धन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो हर बात में धन को ले आएगा। अच्छा दूसरे जिसको बुद्धि का अभिमान होगा ना, वो क्या कहेगा, अरे बुद्धि है तो दुनिया घूम के आ सकते हैं बिना पैसे भी,
वो क्या अपने कि बुद्धि होनी चाहिए अपने पास में, बस देख मैं तेरे को कमाल करके दिखा। वो हर बात में अपनी बुद्धि को, बुद्धि की बड़ाई दिखाता रहेगा। वो धन की बड़ाई दिखाता है, वो बुद्धि की बड़ाई दिखाता रहता है। तो वो कहेगा इसको बुद्धि का अभिमान है, इसको धन का अभिमान, उसको अपना धन का अभिमान है, इसको अपनी बुद्धि का अभिमान है। तो इसलिए जिस बात को ज्यादा हम जस्टिफाई करते रहते हैं, सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता है। जैसे व्यक्ति के साथ के लगा, ये व्यक्ति के बिना नहीं होगा, इसको यहाँ ही रखो, ये व्यक्ति के बिना नहीं होगा, ये व्यक्ति को यहाँ ही रखो, माना इस व्यक्ति के प्रति ये मान्यता हमने बना लिया कि ये व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। तो ये भी एक लगाव है, इसीलिए लगाव है। बाबा यही कहता है कि ये लगाव नहीं होना चाहिए, कोई भी कर सकता है, हर एक के अंदर अपने। तो इसलिए ईगो उस रूप से बढ़ता जाता है। तो जहां अटेंशन गया, अट्रैक्शन माना एनर्जी, अट्रैक्शन कैसे होता है, एनर्जी, जितना ज्यादा हम अपनी एनर्जी देते जाते, एनर्जी देते जाते, उतना अट्रैक्शन लगाव बढ़ता है, अटैचमेंट होता है और उससे एडिक्शन हो जाता है। उसके बिना चलता नहीं है हमें, उस चीज के बिना, धन के बिना, बुद्धि के बिना नहीं चलता है, हैंडीकैप हो जाते हैं और उसकी प्राइस हमें देनी पड़ती है। यानी भावी जो बनेगी उस मान्यता को लेकर के उस, वो हमको प्राइस चुकानी, वहां चुकानी पड़ेगी, यहां नहीं चुकानी पड़ेगी, उस भावी में वो प्राइस को चुकानी पड़ेगी। इसलिए कई बार देखते हैं प्रैक्टिकली भी, यहाँ तो लोग मौज करते हैं, कहते इतना करता है, पाप कर्म करता है, ये करता है तो भी मौज करता है, लेकिन उसकी भावी प्राइस तो वहां चुकानी है उसको, यहाँ नहीं चुकानी है, प्राइस उसको वहां चुकानी पड़ेगी, जो उस मान्यता को लेकर के उसने वो भावी क्रिएट किया, तो वहां चुकानी है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो मौजों से जिएगा, क्योंकि ये भावी तो उसकी पास्ट के आधार पर बनी हुई है, वहां ईगो नहीं था, इसलिए ये भावी अच्छी थी, तो यहां मौत से जी रहा है, लेकिन यहां जो कर रहा है उसका, यहां जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, जिस बात का ईगो है उसको, उसकी प्राइस आगे चुकानी पड़ेगी।